ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यभार संभाला। राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में मुख्य रूप से धान खरीदी और बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे गूंजे। आईआईटी भिलाई में डाक विभाग ने युवाओं के लिए शुरू किया जेन जी पोस्ट ऑफिस। और सूरजपुर जिले के भैसामुंडा के जंगल में एक बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यभार संभाल लिया है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री और पूर्व पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और पार्टी के अन्य नेताओं ने श्री नबीन का स्वागत किया और कार्यभार संभालने पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। नितिन नबीन बिहार सरकार में मंत्री हैं, वे भाजपा के छत्तीसगढ़ प्रभारी भी हैं। कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उनके पदभार संभाल पर आज भाजपा के रायपुर स्थित कार्यालय में लोगों ने जश्न मनाया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी श्री नबीन के पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त होने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि श्री नबीन की संगठनात्मक क्षमता, कुशल नेतृत्व, दूरदर्शी सोच और सुदृढ़ रणनीति ने पार्टी के कार्यकर्ताओं में नया उत्साह पैदा किया है। राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में मुख्य रूप से धान खरीदी और बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे गूंजे। आज की कार्यवाही के बारे में ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार।
आज विधानसभा में प्रश्नकाल के तुरंत बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने धान खरीदी में अव्यवस्था का मामला उठाया और काम रोको प्रस्ताव की सूचना देकर तुरंत चर्चा कराने की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रवन सिंह ने काम रोको प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा की अनुमति दी। ग्राह्यता पर चर्चा के दौरान विपक्षी सदस्यों ने आरोप लगाया कि धान खरीदी प्रक्रिया में अव्यवस्था और कुप्रबंधन के चलते किसानों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि धान खरीदी से जुड़ी समितियों के प्रबंधक, कर्मचारी और कंप्यूटर ऑपरेटर हड़ताल पर चले गए और सरकार उनकी मांगे मानने की बजाय उन पर कार्रवाई कर रही है। चर्चा का जवाब देते हुए खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने विपक्ष को आरोपों को नकारते हुए कहा कि प्रदेश में धान खरीदी व्यवस्था बेहतर हुई है और किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए टोकन व्यवस्था का सरलीकरण किया गया है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी के बदले अब तक 7,500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भुगतान हो चुका है। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि धान खरीदी को लेकर किसानों में आक्रोश है। इससे पहले आज प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बेरोजगारों का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह जानना चाहा कि बीते 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगारों की कुल संख्या कितनी है। जवाब में मंत्री खुशवंत साहब ने बताया कि इस अवधि में 11,39,000 से अधिक पंजीकृत बेरोजगार हैं। मंत्री ने बताया कि बेरोजगारों के लिए रोजगार मेले और प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। अभी की स्थिति में करीब 15 लाख के आसपास पंजीकृत बेरोजगार हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द राज्य स्तरीय रोजगार मेला आयोजित कर 14,000 से अधिक युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार ने अपने बजट में बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया है लेकिन इसे दिया नहीं जा रहा है। इस पर मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को सक्षम और समर्थवान बना रही है। इसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज राज्य विधानसभा में वर्ष 2025-26 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया। इसमें 35,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है। इस अनुपूरक बजट पर कल सदन में चर्चा होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए विधानसभा परिसर नवा रायपुर अटल नगर से मैं अभिषेक कुमार।
आवास और पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने बताया है कि भविष्य में अविक्रित स्टॉक से बचने के लिए प्रदेश में नई निर्माण नीति लागू की गई है। अब मांग आधारित निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी जिससे वित्तीय जोखिम कम होगा। आज नवा रायपुर में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए श्री चौधरी ने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में आवास और पर्यावरण विभाग ने विगत 2 वर्षों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आवास और पर्यावरण मंडल को ऋण मुक्त करने के लिए 735 करोड़ करोड़ रुपए की बकाया राशि राज्य शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। वर्तमान में मंडल पर कोई ऋण नहीं है। वहीं एकमुश्त निपटान योजना OTS2 शुरू कर 1200 से अधिक संपत्तियों की बिक्री कर 190 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। श्री चौधरी ने बताया कि आवंटियों की सुविधा और योजनाओं में पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन पोर्टल को और सुदृढ़ किया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि पीएम यूनिटी मॉल, टेक्सटाइल पार्क और सेमीकंडक्टर तथा आईटी के क्षेत्र में निवेश से निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में रोजगार उपलब्ध होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारे यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवंत कुमार ने प्रदेश में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने रायपुर में बैठक लेकर निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में गणना पत्रकों का भौतिक परीक्षण कर BLO ऐप में अनिवार्य रूप से अपलोड कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जा रहे हैं उनके संबंध में आवश्यक प्रमाण भी सुरक्षित रखे जाएं। श्री कुमार ने निर्देश दिए कि छूटे हुए सभी पात्र मतदाताओं का पुनरीक्षण सुनिश्चित किया जाए और अनुपस्थित, स्थानांतरित तथा मृत श्रेणी के मतदाताओं का भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सटीक सत्यापन कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। उन्होंने अप्राप्त गणना पत्रकों की सूची के संबंध में राजनीतिक दलों के BLA के साथ समन्वय बनाकर उनके हस्ताक्षर प्राप्त करने के निर्देश भी दिए। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से वंचित न रहे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT भिलाई में जेनजी पोस्ट ऑफिस पहल की शुरुआत की गई है। छत्तीसगढ़ परिमंडल के मुख्य पोस्टमास्टर जनरल अजय सिंह चौहान और IIT भिलाई के निदेशक प्रोफेसर राजीव प्रकाश ने आज इस डाकघर का शुभारंभ किया। इस पोस्ट ऑफिस को शुरू करने का उद्देश्य नई पीढ़ी, विशेषकर जेनजी को डाक नेटवर्क से निरंतर रूप से जोड़ना तथा डाक सेवाओं में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके जरिए युवाओं को डाक विभाग की बदलती भूमिका, जैसे डाक बैंकिंग, लॉजिस्टिक्स, डिजिटल सेवाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं से परिचित कराया जाएगा। वहीं विद्यार्थियों को डाक सेवाओं से जुड़े नवाचार, सुझाव और सहभागिता के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सूरजपुर जिले के वाड्रफ नगर वन परिक्षेत्र स्थित भैसामुंडा के जंगल में एक बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। वन विभाग की प्राथमिक जांच में बाघ के शरीर पर चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे हमले की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो पाएगा। वहीं खैरागढ़ जिले के मुढ़ीपार कोपेनवा गांव के जंगल में भी एक तेंदुआ रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाया गया है। ग्रामीणों से मिली सूचना के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का मुआयना किया। प्राथमिक जांच में तेंदुए के चारों पैरों के नाखून गायब मिले हैं और उसका जबड़ा भी नहीं मिला है। मौके पर डॉग स्क्वाड से जांच करवाई जा रही है और संदेह के आधार पर पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा SBI सम्मान राष्ट्रीय नायकों को श्रद्धांजलि विषय पर एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। यह कार्यक्रम कल 16 दिसंबर को सुबह 9:15 बजे से 9:30 बजे तक आकाशवाणी केंद्र रायपुर से सुना जा सकेगा। इसका प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित सभी आकाशवाणी केंद्रों से किया जाएगा। श्रम विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि सफाई कर्मियों के लिए संचालित आवश्यक उपकरण सहायता योजना के लिए चुने गए 8 हितग्राहियों को राशि का भुगतान तकनीकी कारणों से नहीं हो पाया है। सहायक श्रम आयुक्त ने बताया कि पंजीयन के समय गलत बैंक खाता नंबर, बैंक खाता बंद या मर्ज होने तथा IFSC कोड में बदलाव जैसी स्थितियों के कारण भुगतान करना संभव नहीं होता है। श्रम विभाग की ओर से अपील की गई है कि हितग्राही 10 दिनों के भीतर जरूरी विवरण उपलब्ध कराएं, नहीं तो उनका आवेदन निरस्त माना जाएगा। छत्तीसगढ़ पर्यटन बोर्ड की ओर से राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में इन दिनों विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 19 दिसंबर को सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित कर्मा रिजॉर्ट में लोक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। कोंडागांव जिले के फरसगांव ब्लॉक के जुगानी कैंप की अर्चिता मिस्त्री हैदराबाद में आयोजित प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राज्य का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ ने अर्चिता को आगामी विमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वनडे ट्रॉफी के लिए चुना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने आज नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यभार संभाला। राज्य विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज सदन में मुख्य रूप से धान खरीदी और बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे गूंजे। आईआईटी भिलाई में डाक विभाग ने युवाओं के लिए शुरू किया जेन जी पोस्ट ऑफिस और सूरजपुर जिले के भैसामुंडा के जंगल में एक बाघ की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।